कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस URL katha-path.blogspot.in। गुलशेर अहमद खान शानी की कहानी जली हुई रस्सी। अपने बर्फ जैसे हाथों से वाहिद ने गर्दन से उलझा हुआ मफलर निकाला और साफिया की ओर फेंक दिया। पलक भर वाहिद की ओर देखकर साफिया ने मफलर उठाया और उसे तह करती हुई धीमे स्वर में बोली, क्या मीलाद में गए थे? वाहिद ने बड़े ठंडे ढंग से स्वीकृति सूचक सिर हिलाया और पास की खूंटी में कोट टांग के खिड़की के पास आया। खिड़की के बाहर अंधेरा था, केवल सन्नाटे की ठंडी साय साय थी जिसे लपेटे बर्फीली हवा बह रही थी। किंचित सिहर कर वाहिद ने खिड़की के पल्ले लगा दिए और अपने बज उठते दांतों को एक दूसरे पर जमाते हुए बोला, कितनी सर्दी है, जिस्म बर्फ हुआ जा रहा है, चूल्हे में आग है क्या? प्रश्न पर साफिया ने आश्चर्य से वाहिद की ओर देखा, बोली नहीं, चुपचाप खाट पर लेटे वाहिद के पास आई, बैठी और उसके कंधे पर हाथ रखकर स्नेह सिक्त स्वर में बोली, मेरा बिस्तर गर्म है, वहां सो जाओ। वाहिद अपनी जगह लेटा रहा, कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर बाद उठकर पास ही पड़ी पोटली खींची, उसकी गांठें खोली और कागज की पुड़िया रूमाल से अलग करके बोला, शीरनी है, लो खाओ। रहने दो, सुबह खा लूंगी, साफिया बोली। क्या मीलाद में बहुत लोग थे? किसके यहां थी? वकील साहब के यहां, एक तो 11वें शरीफ की मीलादें और दूसरे इतनी सर्दी। वाहिद ने रजाई गर्दन तक खींच ली, अनायास भर उठने वाली झुरझुरी से एक बार सिहर कर अपना जिस्म समेटा और एक कोने में हो रहा। बंद किवाड़ों को धक्का मारकर अंधेरे और शीत में ठिठुरती हवा लौट गई और किवाड़ों की दराज में सिमटकर हवा दोशीजा की नटखट छुअन की तरह गर्म रजाई में भी वाहिद को छूकर कपा गई। पास वाले मकान से एक शोर उठ रहा था, एक बड़ी मीठी चहल पहल जिसमें पुरुष स्त्रियों के स्वर और हंसी मजाक के फवारे, देगों की उठापटक, बल्लियों और कफगीरों के टकराने और झंझनाने की आवाजों के साथ घुले मिले थे। सफिया ने कहा, मुनीर साहब के यहां कल सुबह दावत है। वाहिद ने सुन भर लिया और आंखें बंद कर ली। मुनीर साहब वाहिद के घर के पास ही रहते थे। आज से कोई 6 साल पहले मुनीर साहब यहां मुनीम थे, पर बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और गल्ले का व्यापार शुरू कर दिया। किस्मत अच्छी थी, अतः 2 साल के अंदर ही उन्होंने हजारों रुपए कमाए और अपना पुराना माटी का कच्चा मकान तोड़वाकर पक्का और बड़ा मकान बनवाया। उस दावत की चर्चा वाहिद पिछले कई दिनों से सफिया से सुन रहा था। मुनीर साहब की पत्नी ने, जो अक्सर वाहिद के यहां दोपहर में आ जाया करती थी, 2 हफ्ते पहले ही अपने यहां होने वाली दावत की घोषणा कर दी थी। जब कभी सफिया से भेंट हुई, थोड़ी इधर उधर की चर्चा के बाद बात 11वीं शरीफ के महीने, मीलादों और दावतों पर पलट आई और उसने बातों ही बातों में कई बार सुनाया कि उनके यहां की दावत में कितने मन का पुलाव, कितना जरदा और कितने मन के बकरे कटने को हैं, और इतने दिन पहले ही उनके रिश्तेदार चावल दाल चुनने बीनने और दूसरे कामों के लिए आ गए हैं। इस जरूरत से ज्यादा इंतजाम करने के लिए उन्होंने सफाई दी कि मीलाद, तीजा और किसी दीनी काम में चाहे लोग ना आए, पर खाने की दावत हो तो एक बुलाओ, 4 आएंगे। जब मामूली दावतों का हाल ये होता है तो ये तो खास दावत है। सफिया को बुरा लगा हो ऐसी बात नहीं, पर उसने कभी कुछ कहा नहीं। वही दावत कल होने जा रही थी। बड़ी देर से छा गई चुप्पी को सहसा तोड़कर निराश स्वर में सफिया बोली, मुनीर साहब की बीवी के पांव तो जमीन पर ही नहीं पड़ते, इतनी उम्र हो गई फिर भी जेवरों से लदी पीली उजली दुल्हन बनी फिरती हैं। भला बहू बेटियों के सामने बुढ़ियों का सिंगार क्या अच्छा लगता है? वाहिद ने करवट बदली और एक लंबी सांस लेकर कहा, जिसे खुदा ने इतना दिया है वो क्यों ना पहने, अपने अपने नसीब हैं सफिया। सफिया को संतोष नहीं हुआ, थोड़ी देर चुप रहकर बड़े भरे हुए स्वर में बोली, एक अपने नसीब हैं, खुदा जाने तुम्हारे मुकदमे का फैसला माटी मिला कब होगा। और सफिया के भीतर से बड़ी लंबी और गहरी सांस निकली जो सीधे वाहिद के कलेजे में उतर गई। वाहिद एक ढीला ढाला मंझोले कद का आदमी था, गरीबी और अभाव से उसका परिचय बचपन से ही था। बड़ी आर्थिक कठिनाइयों के बीच 8वीं की शिक्षा प्राप्त कर सका था। 8वीं के बाद किसी तरह कोशिश कर करा के उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी मिल गई और 8 साल के भीतर ही वो डिप्टी रेंजर तक पहुंच गया। जंगल महकमे वालों को भला किस चीज की कमी, चार साल के अंदर ही वाहिद के नाम पोस्ट ऑफिस में 1,500 की रकम जमा हो गई, जिसमें से 700 उसके ब्याह में खर्च हुए। पर सफिया का भाग्य शायद अच्छा नहीं था। पूरे 2 साल भी सुख से नहीं रह पाई कि वाहिद को रिश्वत के आरोप में मुअत्तल कर दिया गया। वाहिद ने बहुत हाथ पांव मारे, पोस्ट ऑफिस से 300 और निकल गए। हेड क्लर्क की कई दावतें हुई। रेंज ऑफिसर साहब, जिनके सर्कल में वाहिद आता था और जिन्होंने रिपोर्ट आगे बढ़ाई थी, उनके यहां उसने कई बार मिठाई, फलों की टोकरी और शहर के भारी भरकम आदमियों की ढेर सारी सिफारिशें भिजवाईं और डीएफओ साहब की बीवी के पास। हालांकि उसके पहले एक बार भी वहां जाने का अवसर नहीं आया था। सफिया को 2-3 बार भेजा पर कुछ नहीं हुआ। केस पुलिस को दे दिया गया और वाहिद पर मुकदमा चलने लगा। पहले कुछ महीनों तक तो काफी सांत्वनाएं मिली वाहिद को कि केस में कोई दम नहीं, खारिज हो जाएगा, यहां वाले ज्यादती और अन्याय करें, पर ऊपर तो सबकी चिंता रखने वाला है और वाहिद के केस के साथ अकेले वाहिद का नहीं, 2 जनों का भाग्य और जुड़ा है। अगर वाहिद दोषी भी है तो वो लोग तो निर्दोष हैं, वगैरह वगैरह। जब 1 साल का अरसा बीत जाने पर मुकदमा तय नहीं हुआ, पोस्ट ऑफिस से पूरे पैसे निकल गए और सफिया के जिस्म पर एक भी जेवर न रहा, तो वाहिद की हिम्मत टूट गई और पहले जुम्मे के अलावा कभी भी मस्जिद की ओर रुख न करने वाला वाहिद अब 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा। लगभग 2 साल के बाद फैसला हुआ और आशा के विपरीत अच्छे से अच्छा वकील लगाने के बावजूद वाहिद को साल भर की सजा हो गई। वैसे तो अकस्मात टूट पड़ने वाली मुसीबत पहाड़ से कम न थी, पर रिश्तेदारों और दोस्तों ने हाईकोर्ट में अपील करने का किसी न किसी तरह प्रबंध कर दिया और पूरे 1.5 बरस से वाहिद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। भले उस प्रतीक्षा में 1 जून के खाने के बाद 2 जून की चिंता की हड़बड़ाहट, सफिया की शिकायतें, दिन ब दिन खराब होती उसकी सेहत और इन बुरे दिनों में मां बनने की एहतियात, आवश्यक दवाइयां, देखभाल और सारी समस्याएं शामिल थीं। मुनीर साहब के यहां से देहों में भारी कफगीरों के फेरने टकराने का स्वर सुनाई दिया। बड़े जोर से छन्न छन्न की आवाज हुई, फिर घी में पड़े ढेर सारे मसालों की मीठी सूंधी खुशबू फैल गई। घी अब वाहिद के लिए ख्वाब है। जब तक लोअर कोर्ट से फैसला नहीं हुआ था, ऑफिस से मुअत्तली का अलाउंस मिल जाया करता था, उसका ही सहारा कम न था। पर अब कहीं कोई आसरा नहीं, उन कड़वे दिनों को वाहिद और सफिया मिलकर झेल भी लें, लेकिन उस मासूम जान का क्या होगा जो वाहिद के दुर्दिन में ही सफिया के भाग्य में आने को था। प्राइवेट फंड की जो थोड़ी बहुत रकम जमा थी और वापस मिलने को थी, उसके जाने के बहुत पहले से रास्ते तैयार थे, इसलिए उसका क्या भरोसा। एक दिन झिझकती हुई सफिया बोली, एक बात कहूं? पल भर के लिए वाहिद डर सा गया, पता नहीं सफिया कौन सी बात कहेगी। तुरंत जवाब देते नहीं बना, क्षण भर उसकी तरफ देखता रहा, फिर पास जाकर अपनी हथेलियों में उसका चेहरा लेकर बड़ी उदास आंखों से देखने लगा। क्या कहती हो? सफिया बोली, प्राइवेट फंड के पैसे मिलेंगे तो घी ला दोगे? बहुत दिनों से अपने यहां पुलाव नहीं बना। वाहिद के भीतर जैसे किसी ने हाथ डालकर खंगाल दिया हो। अपने को किसी तरह पहले वो संयत करके धीरे से मुस्कुराया, फिर जरा जोर से बनाई हुई हंसी हंसता हुआ बोला, बस। सफिया संकोच से लाल होकर मुस्कुराती हुई वाहिद के सीने में छिप गई। वहां से हटकर जब वाहिद दूसरे कमरे में आ गया तो निढाल सा खाट में पड़ गया। भीतर से उफनती रुलाई का आवेग पलकों पर, होठों पर बिछल रहा था। मुंह पोंछने के बहाने रुमाल से उसने आंखें पोंछी और अपने लरज रहे होंठ बाहों में भींच लिए। उस बात को भी 3 माह हो गए थे। सफिया ने 2-1 बार अप्रत्यक्ष रूप से पूछने की कोशिश की और चुप रह गई। उस रकम की वाहिद को आज तक प्रतीक्षा है। वाहिद ने करवट बदली। मुनीर साहब के यहां शोर थम गया था और इक्का दुक्का आवाजें आ रही थीं। सफिया थककर सो गई थी। सर्दी की सुबह वाहिद के लिए 8 से पहले नहीं होती, पर उस दिन देर से सोने पर भी आंख सुबह जल्दी खुल गई। वैसे काम होने या न होने पर भी वो चाय आदि से निपटकर 9 से पहले ही बाहर निकल जाता है, लेकिन उस दिन उसकी चाय 10 बजे हुई। बाहर मुनीर साहब के यहां भीड़ इकट्ठा हो रही थी। साइकिल और पावा का राद उड़ उड़कर धूल का बादल हवा में फैला रहा था। और दिनों की तरह चाय देते हुए आज सफिया ने न तो राशन के खत्म होने की बात कही और न पूछा कि आज वाहिद कहां से क्या प्रबंध करेगा। पिछली रात भी कुछ नहीं था। सुबह का बच रहा थोड़ा खाना वाहिद और सफिया ने मिलकर खा लिया था। रात की मीलाद की शीरनी नाश्ते के काम आ गई थी। वाहिद ने पूछा, क्यों, क्या मुनीर साहब के यहां से कोई आया था? सफिया ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, नहीं, हज्जाम आया था, आम दावत की खबर दे गया है। वाहिद ने और कुछ नहीं पूछा और बाहर निकल गया। मुनीर साहब के घर के सामने से लेकर दूसरे मोड़ तक लोगों का आना जाना लगा था। रंगीन धारीदार तहमद लपेटे, सफेद और काली टोपियां लगाए, सिर में रूमाल बांधे लोग मुनीर साहब के घर की ओर बढ़ रहे थे। एकाएक सामने से रिजवी साहब दिखाई दिए। वाहिद उनसे कतराना चाहता था, पर जब सामने पड़ ही गए तो बरबस मुस्कुराकर आदाब करना ही पड़ा। रिजवी साहब के साथ 9 से लेकर 3 साल तक के 4 बच्चे चल रहे थे, जिनके सिर पर आड़ी टेढ़ी, गंदी और तेल में चीकट मुड़ी मुड़ाई टोपियां थीं। रिजवी साहब ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों भाई, मुनीर साहब के यहां से आए हो क्या? वाहिद ने झिझक कर कहा, जी नहीं। वाहिद से रिजवी साहब बोले, तो फिर चलो ना। वाहिद पल भर चुप रहा, फिर संभल कर बोला, आप चलिए, मैं अभी आया। रिजवी साहब आगे बढ़ गए। कोई 2 घंटों के बाद जब वाहिद लौटा तो मुनीर साहब के घर के सामने से भीड़ छट गई थी, पर महफिल अभी भी चल रही थी। कोई पूछे या न पूछे, स्वागत करे या न करे, लोग आते, सामने के नल पर हाथ धोते और बैठ जाते। एक ओर से कंधे पर कपड़े से ढका तश्त लिए चिंचोड़ी गई हड्डियों के गिर्द फैले ढेर सारे कुत्तों को हकालती हमीदा की मां निकली। हमीदा की मां पिछले 5 वर्षों से मुनीर साहब के यहां नौकर थी। अक्सर तीज त्योहारों के अवसर पर मुनीर साहब के यहां से शीरनी लेकर हमीदा की मां वाहिद के यहां आया करती थी। उससे बात करने की ना तो वाहिद को कभी जरूरत पड़ी और ना ही मौका आया। फिर भी आज वाहिद ने रोक कर पूछा, हमीदा की मां, क्या लिए जा रही हो? हमीदा की मां ने पल्लू संभाल कर कहा, खाना है भैया, सिटी साहब के यहां पहुंचाने जा रही हूं। भला वो क्यों? अब पता नहीं, सिटी साहब आम दावत में आना पसंद करें ना करें, बेगम साहिबा भिजवा रही हैं। और हमीदा की मां आगे बढ़ने लगी। तभी एकाएक चौंक कर, जैसे कोई महत्वपूर्ण और विशेष बात छूटी जा रही हो, जरा आवाज ऊंची करके रोकने के अंदाज में वाहिद ने पूछा, और कहां कहां ले जाना है हामिद की मां? हामिद की मां ने थोड़ा रुक कर कहा, पता नहीं भैया, इतना जानती हूं कि अभी मेरी जान को। वाहिद होंठों में ही मुस्काया और मुनीर साहब के घर की ओर बढ़ा। सामने आंगन में 2-3 बड़ी बड़ी दरियां, जो संभवतः हर दावत में पहुंच पहुंच कर गंदी हो चुकी थीं, बिछी हुई थीं, जिन पर साफ नए कपड़े पहने कुछ बच्चे खेल रहे थे। पास के नल से क्षण प्रतिक्षण बह रहे पानी से आंगन के आधे हिस्से में कीचड़ फैल चुका था। पास ही 2-3 चारपाइयां डाल दी गई थीं। चारपाइयां शायद उन उम्मीदवारों के बैठने के लिए थीं जो देर से आने के कारण चल रही पांत समाप्त होने और दूसरी पांत के प्रारंभ होने की प्रतीक्षा करते हैं। उन्हीं लोगों में से क्या वाहिद भी है? वो बड़े फीके ढंग से मन ही मन हंसा। रस्सी भले ही जल गई हो, पर क्या उसका बल इतनी जल्दी निकल जाएगा? थोड़ी देर तक वाहिद वहीं खड़ा रहा। वहां बैठने बिठाने अथवा पूछने के लिए किसी की जरूरत नहीं थी। लोग आते थे, जाते थे। भीतर के कमरे से जहां खाना चल रहा था, बर्तनों की टकराहट के साथ, पुलाव की महक सांसों के साथ वाहिद के फेफड़ों में भर गई। मुंह भर आया, घूंट हलक के नीचे उतारकर वाहिद एक ओर खड़े दांत खोदते और थूकते 2-3 दाढ़ी वाले बुजुर्गों के पास जा खड़ा हुआ। दांत के अतरों में फंस गए गोश्त के टुकड़ों को तीली से निकाल फेंकने की जी तोड़ कोशिश करते हुए उन लोगों ने केवल वही सवाल किया जिसका जवाब वाहिद पिछले 1.5 वर्ष से प्रायः हर मिलने वाले को दिया करता था, कि उसके केस का क्या हुआ, किस वकील को लगाया है, कितनी परेशानियां हो गईं और अपील के फैसले को कितनी देर है वगैरह। वाहिद ने सैकड़ों बार कही बात एक बार फिर अपने अनमने ढंग से दोहरा दी। तभी दरवाजे के पास मुनीर साहब दिखाई दिए। इधर से ध्यान हटाकर वाहिद ने मुनीर साहब के चेहरे की तरफ आंखें जमा दी, पर लगातार कई मिनटों तक मुनीर साहब के चेहरे की तरफ देखते रहने पर भी उनका ध्यान वाहिद की तरफ नहीं लौटा। और वो अपने किसी नौकर को हिदायतें देकर लौटने लगे तो अपनी जगह से एकदम आगे आकर पुकार कर वाहिद ने कहा, मुनीर साहब, आधा वर्ज है। मुनीर साहब जाते जाते पल भर को रुके, आदाब लिया, वाहिद की ओर देखकर मुस्कुराए और तेजी से भीतर चले गए। एकदम पीछे अपनी जगह लौटने से पहले वाहिद ने सुना, पास के दाढ़ी वाले सज्जन उसका नाम लेकर पुकार रहे थे। लौटकर देखा तो उन्होंने कहा, वाहिद मियां, पान लीजिए। एक कम उम्र का लड़का वाहिद के आगे पान की तश्तरी बढ़ाए खड़ा था। पल भर रुककर वाहिद ने अपने इर्द गिर्द देखा, सामने खड़े लड़के पर एक निगाह डाली, तश्तरी से एक पान उठाकर मुंह में रखा और लौट रहे लोगों के पीछे हो लिया। घर पहुंचकर देखा, सफिया तकिये में मुंह डाले चुपचाप पड़ी थी। बावर्ची खाने की ओर निगाह गई। चूल्हा लिपा पुता साफ था और धुले मजे बर्तन चमक रहे थे। वाहिद को देखकर सफिया उठ बैठी और अपनी ओर घूर कर देख रहे वाहिद की आंखों में केवल निमिष भर के लिए देखकर ठंडे स्वर में पूछा, कितने लोग थे दावत में? हामिद की मां तो आई नहीं? वाहिद के जले पर जैसे किसी ने नमक छिड़क दिया हो। तिलमिलाकर तीखे स्वर में उसने कहा, हामिद की मां की ऐसी की तैसी, मैं ऐसी दावतों में नहीं जाता। ये जानकर भी तुम ऐसे सवाल करती हो? हमने क्या पुलाव नहीं खाया? जिसने ना दिखा हो वो साला वहां जाए। गुलचेर अहमद खान शानी की कहानी, जली हुई रस्सी। कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस, URL kathapath.blogspot.in।